अध्याय एक, मुस्लिमों के पहले भारतीय संस्कृति। इस्लाम के प्रभाव के पहले भारत में विद्यमान धार्मिक स्थिति को समझने के लिए यह जरूरी है कि सुगम बनाने का कोई ऐसा सिद्धांत प्रस्तुत किया जाए जो चिंतन और उपासना की प्रमुख प्रवृत्तियों का परिचय दे, सभी विद्यमान संप्रदायों और पंथों के वास्तविक तथ्यों का, उनके रिश्तों और टकरावों का विस्तृत वर्णन इतना जटिल है कि वह एकदम भ्रमित करने वाला होगा तथा उपयोगी नहीं होगा, और इसलिए उसकी कोशिश करने की जरूरत नहीं है। हिंदू अपने धर्म को मोक्ष के दृष्टिकोण से देखते हैं और इसे पाने के लिए वे तीन मार्गों को मान्यता देते हैं, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। सभी धर्मों और संप्रदायों को इन तीन शीर्षकों में रखना सुविधाजनक होगा, लेकिन यह याद रखना होगा कि आपस में न तो ये अलग थलग हैं और न एक दूसरे के विरोधी हैं। असल में सभी संप्रदाय व्यावहारिक रूप से उनके मूल्य को मान्यता देते हैं और उन्हें अपने अनुयायियों पर लागू करते हैं, किंतु यह बात रोचक है कि प्रारंभिक काल में कर्म मार्ग का धार्मिक महत्व सबसे ज्यादा था, ज्ञान मार्ग का महत्व इसके बाद विकसित हुआ और भक्ति मार्ग सबसे अंत में महत्वपूर्ण हुआ। तीनों का अस्तित्व साथ साथ रहा, किंतु जबकि पहले दो का प्रभाव लुप्त हो गया है, भक्ति मार्ग का प्रभाव बढ़ गया है। भक्ति मार्ग का प्रतिपादन वेदों में किया गया है, उसे ब्राह्मण ग्रंथों, कल्पसूत्रों और कर्म मीमांसा के माध्यम से विकसित और व्यवस्थित किया गया है, और धर्मशास्त्रों तथा महाभारत और पुराणों के जरिए उसे लोकप्रिय बनाया गया है। तो फिर प्रश्न यह है कि कर्म मार्ग का दार्शनिक आधार क्या है? वैदिक चिंतन में चाहे जो ऐतिहासिक स्तरीकरण हो, अपने परिपक्व स्वरूप में वह एक सुगढ़ दार्शनिक धार्मिक प्रणाली है। इस प्रणाली में एक सर्वोच्च शक्ति अंतिम सत्य के रूप में उपस्थित है, उसे एकम पुरुष विश्वकर्मन प्रजापति तद ब्राह्मण भावातीत और सर्वव्यापी सर्वज्ञ नीतिशास्त्र का धारक और ब्रह्मांड का नियामक माना जाता है। वह पिता, सृष्टि का पालक और सहयोगी और कामना पूर्ति करने वाला है। जो भी स्थिर और जंगम है वह चलाए मान है, जो उड़ता है और जो यह बहुरूपी रचना है वह उसका स्वामी है। यह वह विश्व की रचना कैसे करता है? वैदिक साहित्य में इसके कई विवरण हैं। कभी बताया जाता है कि ब्रह्मांड मशीनी ढंग से उत्पन्न हुआ है, उसे मापा जा सकता है और विस्तारित किया जा सकता है, उसकी बुनियाद होती है, उसका आधार होता है और ढांचा होता है। कभी यह यज्ञ का परिणाम होता है, कभी कभी पुरुष ही उसका शिकार हो जाता है और उसके अंशों से ही ब्रह्मांड के संबंधित हिस्से निर्मित होते हैं। अधिक दार्शनिक रूप से विचार किया जाए तो रचना एक प्रक्रिया है, असत में सत का विकसित होना है। प्रारंभ में नास्ति और अस्ति दोनों का अस्तित्व नहीं था, एक काला शून्य था जिसमें परमात्मा शांति और निर्वात में श्वास लेता था। फिर उसमें कामना जागृत हुई जो अस्ति और नास्ति का बंधन था और समग्र रचना का कारक था। किंतु जो विवरण लोकप्रिय हुआ वह यह था कि आदिम जीव ने पानी की रचना की जिस पर सोने का अंडा तैर रहा था, वह उसमें प्रविष्ट हुआ और उससे ब्रह्मा के रूप में उत्पन्न हुआ जो पहली रचना थी। ब्रह्मा ने उसके बाद देवताओं, स्वर्ग, पृथ्वी, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, ब्रह्मांड और मानव की रचना की। ब्रह्मांड की ये सब सर्जनाएं स्पष्टतः सर्वेश्वरवादी प्रवृत्ति प्रकट करती हैं, क्योंकि रचना का मतलब या तो प्रथम सिद्धांत का सृष्टि में रूपांतरण है या तो भावातीत था उसका सर्वव्यापीकरण या अव्यक्त का व्यक्त होना है, किंतु इस सर्वेश्वरवाद के भीतर व्यक्तित्व का सिद्धांत निहित है, क्योंकि ब्रह्मांड कामना का परिणाम है और रचना इच्छा का प्रभाव है। कर्म मार्ग के दृष्टिकोण से यह तथ्य वास्तव में अत्यंत महत्व का है। सृष्टि ईश्वर की इच्छा का रंग मंच है और प्रत्येक जीवित और मृत चीज उसके शाश्वत आदेश से परिचित होती है और सभी क्रियाएं और हलचल एक श्रृंखला में बंधे होते हैं। सभी प्राकृतिक घटनाएं दिन और रात, सूर्य और चंद्रमा, नदियां और समुद्र तथा सभी देवतागण अग्नि, सोम, बृहस्पति, इंद्र, अदिति और वरुण एक नियम से बंधे हुए हैं। साथ ही देवताओं के लिए मनुष्य जो भी कर्म कांड करता है वह सब अंतरिक्ष के सर्वव्यापी नियम के अनुपालन में करता है। वास्तव में इस नियम की कठोर गरिमा के सम्मुख देवताओं की शक्ति भी मध्यम पड़ जाती है। यज्ञ इस सृष्टि की व्यवस्था का प्रतीक है। यह प्रजापति की शक्ति का उद्गम भी है, क्योंकि जब वह उस शक्ति को रचना में लगा देता है तो देवता उसकी नैसर्गिक शक्ति की पूर्ति यज्ञ के द्वारा कर देते हैं। यज्ञ के द्वारा देवता वर्षा और झंझावात और सूर्योदय के रूप में अपनी क्रियाओं का प्रदर्शन करते हैं। इस प्रकार यज्ञ एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा ईश्वर की इच्छा पूरी होती है। मनुष्य ईश्वर की रचना है और वह उसकी सदिच्छा पर आश्रित रहता है। वह उसकी इच्छा को समझने और उसकी व्याख्या करने का प्रयास करता है और अपने क्रियाकलापों को अपने देवताओं के अनुसरण में स्वाभाविक रूप से ढाल लेता है। अतः यज्ञ यहाँ समृद्धि पाने और फिर धान्य होने का माध्यम है, परमानंद प्राप्त करने का मार्ग है, कर्म मार्ग, जिसका तात्पर्य है श्रद्धा और प्रार्थना के साथ किया गया यज्ञ। यज्ञ कई प्रकार के होते हैं, वे बाध्यकारी और नित्य, बाध्यकारी किंतु नैमित्तिक और काम्य होते हैं। इसके अतिरिक्त वे महान यज्ञ भी हैं जिनका उपयोग बाद में नहीं हुआ, और गृह यज्ञ जो आज भी व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। वैदिक यज्ञ में पशुओं और फलों, दूध और भात का अर्पण भी होता था, किंतु पशुओं की बलि कर्म कांड से तिरोहित हो गई और स्मृतियों के अनुयायी केवल रक्तहीन बलि करने लगे। हालांकि यज्ञ ब्रह्मांड के यज्ञ के प्रतीक थे और इस कारण वांछित उद्देश्यों की प्राप्त के लिए प्रभावशाली होते थे। फिर भी यज्ञ मानव कार्य का समग्र नहीं थे, इसलिए मनुष्य के जीवन की रूपरेखा तय है और समाज में मनुष्य की स्थिति तय है। जीवन के चार आश्रमों के हर हिस्से के और समाज की वर्ण व्यवस्था के परिचालन के निमित्त निश्चित है। इन कर्तव्यों का स्थायित्व वर्णाश्रम धर्म का अनिवार्य अंग बन जाता है। तथापि भगवत गीता में इस अवधारणा का एक दूसरा विकास होता है, जिसमें यह कहा गया है कि कर्म मार्ग के द्वारा मुक्ति पाई जा सकती है और कर्म को ऐसा कर्तव्य पालन माना गया है जो बिना फल की कामना के किया जाता है। इस प्रकार कर्म के धर्म का यह दार्शनिक आधार था, किंतु लोक व्यवहार में न्यूनाधिक रूप से इसका तात्पर्य देवताओं के लिए यज्ञ करना और घरू अनुष्ठानों को संपन्न करना था। वेदों में देवताओं की रचना सबसे पहले हुई। वे प्रकृति की अर्धमानवीकृत शक्तियों थी और उनके कामों को अलग थलग करके शायद ही कभी देखा जाता था, और इसलिए वे सरलता से एक दूसरे में विलीन हो जाते थे। उसे इंद्र, मित्र, वरुण, अग्नि कहा जाता है और वह स्वर्गिक पंखों वाला गरुत्मन है। किंतु बाद में देवताओं ने ज्यादा सुनिश्चित व्यक्तित्व हासिल कर लिए। भारत में मुस्लिमों के आगमन के पहले प्राचीन देवताओं के महत्व और उनकी संख्या में बहुत परिवर्तन हो चुका था। उनमें से ज्यादातर देवता देवालयों से लुप्त हो गए और अन्य देवताओं के महत्व में बहुत अंतर हो गया और कई नए देवता लोकप्रिय हो गए। उच्चतर श्रेणी के जीव होने के कारण वे सृष्टि और मानव के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे। प्रार्थना और यज्ञ से उनकी कृपा प्राप्त होती थी और उपर्युक्त अनुष्ठान और साधना से उनके क्रोध का शमन किया जाता था। हर देवता के अनुयायी होते थे और कुछ खास देवता के पंथ होते थे। बाद में जो बदलाव हुए उन्हें समझने के लिए उन दिनों विद्यमान पंथों की ताकत और सापेक्ष लोकप्रियता का आकलन करना जरूरी है। वैदिक देव परिवार में वे देवता रहते थे जो स्वयं स्वर्ग में आवास करते थे या पृथ्वी के ऊपर के वातावरण में रहते थे। इनकी संख्या 33 थी, लेकिन जिन देवताओं के लिए सर्वाधिक ऋचाएं गाई गई हैं, वे हैं इंद्र, अग्नि और सोम। वरुण सबसे ऊंचा था, प्रजापति सृष्टि करता था। विष्णु और रुद्र, शिव पर कम ध्यान दिया गया। अन्य पौराणिक धर्म में ब्रह्म एक सृष्टिकर्ता और परोपकारिक पूर्वज के रूप में सभी देवताओं का अधिष्ठाता था, किंतु अग्नि, यम, वरुण, कुबेर और इंद्र की प्रार्थना सबसे ज्यादा की जाती थी। बाद में शिव और विष्णु की स्थिति प्रमुख हो गए और ब्रह्मा के साथ मिलकर ये त्रिमूर्ति बन गए। सातवीं और आठवीं सदियों में लोकप्रिय उपासना की स्थिति क्या थी, यह बताने के लिए पर्याप्त समकालीन प्रमाण है। इन प्रमाणों में चीनी यात्रियों, संस्कृत नाटकों, शिलालेख और भारतीय शासकों के सिक्के और अरब यात्रियों के विवरण आते हैं। उनसे प्रकट होता है कि अवैदिक धर्मों, बौद्ध धर्म और जैन धर्म तो पतनावस्था में थे, किंतु प्राचीन वैदिक धर्म में बहुत बदलाव आ गया था। शिव की उपासना भारत का प्रमुख धर्म था, शक्ति संप्रदाय का महत्व बढ़ रहा था और विष्णु और अन्य देवताओं के प्रति लोगों का झुकाव कम हो रहा था। फाहयान के विवरण से मालूम होता है कि पांचवी सदी में जब वह भारत आया, तब काबुल और खेतान से मथुरा तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्से में बौद्ध धर्म के प्रति लोगों में निष्ठा थी और मध्य देश में बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म के बीच तेजी से समन्वय हो रहा था। ऐसे 96 संप्रदाय थे जो जगत को सत्य मानते थे और बौद्ध धर्म महायान सिद्धांतों को स्वीकारता था, किंतु जो प्राचीन क्षेत्र बौद्ध धर्म का पालना था वह मरुस्थल हो गया था। संगाराम और विहार खंडहर हो गए थे और श्रावस्ती, कपिलवस्तु, कुशीनगर, वैशाली, पाटलिपुत्र या गया जैसे प्राचीन नगरों में शायद ही कोई विद्वान थे। भूमि वीरान हो गई थी, निवासी पलायन कर रहे थे, मार्ग वन्य प्राणियों से भरे थे और सब जगह बर्बादी का साम्राज्य था। लेकिन पूर्व में चंपा और ताम्र लिप्ति के मध्य में बौद्ध धर्म अभी भी फल फूल रहा था। जब 200 साल बाद विन सॉन्ग ने भारत का भ्रमण किया तो उसने पाया कि हिंदू धर्म बौद्ध धर्म के समानांतर दृढ़ता से स्थापित है। उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में अब यह धर्म फल फूल नहीं रहा था। लमगान में, गंधार में, उदयान में, कश्मीर में और पंजाब में सब जगह और नीचे मथुरा तक हीनयान के स्थान पर महायान स्थापित हो गया था। इससे ज्यादा महत्व की बात यह है कि ब्राह्मण पुरोहितों के देवालय अभी भी संख्या और महत्व में बौद्ध संघारामों और श्रमणों के समकक्ष थे। मध्य देश में, भारत के पूर्व में और दक्षिण में जहाँ भी उसने यात्रा की, उसने यही स्थिति पाई। उत्तर भारत का सम्राट हर्षवर्धन दोनों धर्मों को समान रूप से सम्मान देता था और प्रयाग के मैदान में होने वाले महान समारोहों में वह एक के बाद एक बुद्ध, सूर्य और महेश्वर की मूर्तियों की स्थापना करके और उनकी पूजा करके अपनी निरपेक्षता प्रदर्शित करता था। वेन सॉन्ग के विवरण में शैव पूजा के, विशेषकर पाशुपत संप्रदाय के विद्यमान होने के उल्लेख भरे पड़े हैं। स्वात घाटी में शिव के उत्थान से फसलों को नुकसान होता था। पलुष के उत्तर पूर्व में स्थित सोली में महेश्वर की पत्नी भीमा की एक मूर्ति थी और भभूतधारी तीर्थकों का एक मंदिर था। मकरान में सैकड़ों देव मंदिर थे और बहुत से लोग पाशुपत संप्रदाय को मानते थे और नगर में महेश्वर का एक विशाल मंदिर था जिसे पाशुपत लोग बहुत सम्मान देते थे। फालाना में देव मंदिर जो मुख्यतः पाशुपतों के थे, महेश्वरपुर लोग बौद्ध नहीं थे और अधिकांश मंदिर पाशुपतों के थे। ओ तीन पो चीलो एक भव्य महेश्वर मंदिर और कई पाशुपत थे। खोतान में पाशुपत थे क्योंकि पाशुपत इंजीनियर को चीन के राजा ने अपनी राजधानी की नींव डालने के लिए नियुक्त किया था। कश्मीर में कृतियों ने बौद्ध धर्म को उखाड़ फेंका था और विधर्म स्थापित कर दिया था। पंजाब में सिंधु नदी से लेकर सतलज तक कई विधर्मी संप्रदाय थे और जालंधर में सभी विधर्मी पाशुपत थे। अहिच्छत्र में ऐसे साधु थे जो ईश्वर को बलि चढ़ाते थे और पाशुपतों के सहचर थे। कपिता में ऐसे मंदिर थे जहां महेश्वर की पूजा की जाती थी और उसे बलि दी जाती थी। कन्नौज में महेश्वर का एक भव्य मंदिर था। बनारस में 100 से ज्यादा देवालय थे और उस संप्रदाय के 10,000 से ज्यादा अनुयायी थे, जिनमें से अधिकतर शिव के भक्त थे। उनमें से कुछ अपना सिर मुड़ा लेते थे और अन्य लोग चोटी रखते थे। वे अपने शरीर पर भभूत मलते थे और हर तरह के उपवास करके वे जन्म और मृत्यु से बचना चाहते थे। वहां करीब 100 फुट ऊंची महेश्वर की तांबे की प्रतिमा थी। वह गंभीर और भव्य है और ऐसी लगती है जैसे कि वह जीवित हो। कपिल वस्तु में ईश्वर देव का एक मंदिर था। अयोध्या के आगे गंगा नदी में लुटेरे थे जो दुर्गा के उपासक थे और हर साल मानव बलि देते थे। बंगाल में शशांक ने, जो शैव था, बौद्धों का दमन किया। नालंदा विश्वविद्यालय में विनसांग का भूतों से विवाद हुआ, जो अपने शरीर पर राख मलते थे, और कापालिक, जो अपने शरीर सिर पर हड्डियों की माला धारण करते थे, पूर्वी समुद्र तट पर हिंदू संप्रदाय थे, और ब्रह्मगिरी तथा धनकटक में दुर्गा की पूजा की जाती थी। मलय के पूर्व में पोटालक पर्वत पर शिव का एक मंदिर था। पश्चिमी भारत में मालवा ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। वहां सैकड़ों देव मंदिर थे और उनमें से अधिकतर पशुपत संप्रदाय के थे। ईरान, अफगानिस्तान और मध्य एशिया में भी बौद्धों के अतिरिक्त पाशुपत भी थे और वे अपने मंदिरों में अपने अनुष्ठान करते थे। साहित्यिक स्रोत ह्वेनसांग के विवरण की पुष्टि करते हैं। शूद्रक के मृच्छकटिक से बौद्ध धर्म के आधिपत्य का पता चलता है, किंतु इसमें शिव की किसी भी रूप में उपेक्षा नहीं की गई है, क्योंकि नदी अपने मंगलाचरण में नीलकंठ का आवाहन करता है, जिनकी नीली ग्रीवा पर विद्युत के समान दीप्त गौरी की भुजा लिपटी थी। कालिदास रघुवंश की प्रारंभिक पंक्तियों में पार्वती और परमेश्वर की वंदना करता है। बाढ़ के हर्ष चरित्र में शिव को कई विशेषणों से संबोधित किया गया है। वह महाभैरव के मुख की विशालता का, ब्रह्मा की खोपड़ी से बने भिक्षा पात्र का और विभिन्न संप्रदायों के भक्तों में महापाशुपतों का उल्लेख करता है। कादंबरी में शिव के प्रति महाकाल के रूप में सम्मान प्रकट किया जाता है। कादंबरी में शिव को जो प्रमुखता दी गई है, उससे प्रकट होता है कि उस समय यह पूजा लोकप्रिय थी। उज्जैन के बारे में कहा गया है कि वह महाकाल की रचना है। भवभूति अपने मालती माधव में वह मालती को शंकर के मंदिर जाते बताता है। भवभूति अपने ग्रंथ मालती माधव में लिखता है कि मालती ने शंकर के मंदिर का भ्रमण किया था। पश्चिम भारत में शिव पूजा प्रचलित थी। मांधता, उज्जैन, सनाशिक, एलोरा, नागनाथ, अहमदनगर के पूर्व में और भीमा के उद्गम में नागनाथ में विशाल शिवलिंग थे और 12वीं सदी ईस्वी में भी वहां रक्तिम अनुष्ठान संपन्न होते थे। पुराणों का कालक्रम निश्चित न होने के कारण उनके साक्ष्य का पर विश्वास करना कठिन है, किंतु महाभारत और पुराणों में शिव जो को जो महत्व की स्थिति प्राप्त है, उससे सिद्ध होता है कि यह संप्रदाय इतना लोकप्रिय हो गया था कि उसे ब्राह्मणवादी प्रणाली में मान्यता देना पड़ा। यह असंभव नहीं है कि त्रिदेवों में विष्णु के सम्मिलित होने के बाद शिव को सम्मिलित किया गया और महाकाव्यों और पुराणों के वैष्णव संस्करण शैव स्पर्श से पहले के हैं। इसमें संदेह नहीं है कि शिव और विष्णु दोनों की उपासना साथ साथ विद्यमान थी और गुप्त काल में दोनों में शिव ज्यादा लोकप्रिय देवता थे। कुषाण राजाओं के सिक्कों और विभिन्न वंशों के अभिलेख इसी सन्निकर्ष की ओर इंगित करते हैं। 7वीं और 8वीं सदियों के दौरान अरब लोग गुजरात, के तट पर और खंभात की खाड़ी तथा मलाबार तट पर कई बार उतरे थे। उन्होंने हिंदू संप्रदाय के बारे में प्राप्त की गई जानकारी को 9वीं और बाद की सदियों में संकलित अपनी धार्मिक पुस्तकों में सम्मिलित किया। ये संदर्भ भारतीय धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में रोचक जानकारी देते हैं। उदाहरण के लिए सुलेमान उन साधुओं के बारे में लिखता है जो पर्वतों और जंगलों में विचरण करते थे, कंद मूल और फल खाकर रहते थे और शेष संसार से शायद ही कभी संपर्क रखते थे। वह उन लोगों के बारे में लिखता है जो अपनी कमर में तेंदुए की खाल के अतिरिक्त कुछ नहीं पहनते थे और कठोर तप करते थे। अबू जैद अल हसन सिर्फी ने ऐसे साधुओं को विचरण करते देखा जो अपनी गर्दन पर एक रस्सी बांधे रहते थे जिसमें एक मानव कपाल लटकता था, जिसमें वे अपना भोजन करते थे। निसंदेह वह शैव संप्रदाय के कापालिकों का उल्लेख कर रहा था। प्रसिद्ध किताब अल फिहरिस्त के लेखक अबुल फराज मोहम्मद इब्न इशाक अल नदीम ने 863 ईस्वी में लिखी गई एक पुस्तक, संभवतः अल किंदी द्वारा लिखी पुस्तक से हिंदुओं के बारे में लिखे गए विवरण से प्रतिलिपि की थी, जिसके लिए सामग्री बरम की वंश के यहिया इब्न खालिद की पहल पर भारत को भेजे गए एक दूत के द्वारा एकत्र की गई थी। किताब में महाकाल संप्रदाय का उल्लेख है और उसमें शिवलिंग का विस्तार से वर्णन किया गया है। संभवतः उज्जैन के मंदिर के अपनी पुस्तक किताब अल मिलाल फी निहाल में अल सहरिस्तानी पशुपत लोगों के बारे में लिखता है जिनका देवता बैल पर सवार मानव आकृति का दैवी देवभूत था, जिसके सिर पर नरमुंडों का मुकुट था और गले में शंखों की माला थी तथा उसके एक हाथ में कपाल और दूसरे हाथ में त्रिशूल था। वह महाकाल और शिव की मूर्तियों का उल्लेख करता है। इस प्रकार ऐसा लगता है कि 7वीं और 8वीं सदी में शिव पूजा भारत के एक बड़े भाग में प्रचलित थी, किंतु उसके साथ अन्य देवताओं की पूजा का भी प्रचलन था, हालांकि उसका अधिक विस्तार नहीं था। इन सभी से विष्णु की पूजा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी। विन सॉन्ग बिना विशेष वर्णन के देवालयों और हिंदू संप्रदायों का उल्लेख करता है, पर वह शैवों का विस्तार से वर्णन करता है। उसने नव देव कुल में विष्णु के मंदिर का और महासागर के नारायण देव के मंदिर का उल्लेख किया है। प्रारंभिक मुस्लिम विवरणों में शैवेतर संप्रदायों का बहुत स्पष्ट वर्णन है और उनसे वैष्णव संप्रदाय के प्रचलन के बारे में कोई सही अनुमान लगाना संभव नहीं है, किंतु अल शहरिस्तानी बसुआ का उल्लेख करता है जिसे हार ब्रूकर बसुवीय अर्थात वैष्णव पढ़ते हैं, किंतु संप्रदाय का जो विवरण है वह वैष्णवों का हो ऐसा नहीं है। उस काल के हिंदू साहित्य से भी ऐसी ही स्थिति प्रकट होती है। हर्षचरित में बाण भगवतों और पंचरात्रों का तथा कादंबरी में क्री के अनुयायियों का उल्लेख करता है, मयूर नृसिंह के पंजों का उल्लेख करता है और कृष्ण के आतंक का विवरण देता है। महाकाव्यों में विष्णु भक्त की भक्ति का आधिपत्य है और कुछ पुराण विष्णु को समर्पित हैं, किंतु इससे कोई यह तय नहीं कर सकता कि संप्रदाय का विस्तार हुआ, क्योंकि यह सुनिश्चित करना कठिन है कि महाकाव्य और पुराण उन बौद्धिक अभिजात्य वर्ग के विचारों की अभिव्यक्ति है जो दरबारी पंडित थे या सर्वसाधारण के विचारों की अभिव्यक्ति है। उनसे यह निष्कर्ष निकालना और भी कठिन है कि विभिन्न क्षेत्रों में उस समय कौन कौन से संप्रदाय विद्यमान थे। कुल मिलाकर साक्ष्यों से यह संकेत मिलता है कि 7वीं और 8वीं सदी का भारत वैष्णव नहीं था बल्कि शैव था। यद्यपि बाद में अल बिरूनी के समय उनकी सापेक्ष स्थिति उलट गई थी। शिव और विष्णु के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण संप्रदाय थे शक्ति, सूर्य, चंद्र, ब्रह्म, इंद्र, अग्नि, स्कंद, गणेश, यम और कुबेर। वेन सॉन्ग अपने यात्रा विवरण में बाण, हर्षचरित और चंडी शतक में मयूर अपने छंदों में शक्ति की पूजा के विभिन्न रूपों का उल्लेख करते हैं। महाभारत में दुर्गा को समर्पित कविताएं दी गई हैं और तंत्र जो उसी संप्रदाय के हैं का वर्तमान रूप संभवतः छठवीं सदी में हुआ। मात्र का संप्रदाय का शाक्त संप्रदाय से निकट संबंध था और उसका व्यापक प्रचार था। ऐसा लगता है कि सौर संप्रदाय इस काल में व्यापक रूप से फैला था। मुल्तान में एक भव्य मंदिर था जिसे क्वेन सॉन्ग, इब्न हौकल और इस तखरी ने देखा और उसका वर्णन किया। किताब अल फिहरिस्त में सोम के पूजकों का उल्लेख है जिसमें चार घोड़ों द्वारा खींचे जा रहे रथ पर सोम की मूर्ति थी जिसके हाथ में अग्नि के रंग का पत्थर था। अल शहरस्तानी भी ऐसी ही विवरण देता है। मयूर अपने सूर्य शतक में सूर्य को सर्वोच्च देवता मानता है और उसे ब्रह्म, शिव, विष्णु, यम और कुबेर के समकक्ष मानता है। उसके लिए सूर्य न केवल देवता है किंतु बिरादरी का एक सदस्य और एक दयालु मित्र, शिक्षक और पिता है। वाराह मिहिर सूर्य की मूर्ति और मंदिरों की स्थापना और अभिषेक के लिए निर्देश देता है और हर्षवर्धन स्वयं को परमादित्य भक्त कहता है। गणपति या गणेश, स्कंद या कार्तिकेय, चंद्र और अन्य देवताओं तथा देवियों के बारे में विस्तार से लिखने की जरूरत नहीं है। कर्म मार्ग के अनुयायी सभी संप्रदायों में और सभी देवताओं के भक्त में पाए जाते थे। उनकी पूजा घर या मंदिर में देवता की मूर्ति के समान प्रार्थना करके की जाती थी और मान्य घरों और सार्वजनिक अनुष्ठान करके तथा बलि चढ़ाई जाती थी, किंतु यह बलि अपवाद स्वरूप ही मानव बलि होती थी। हाँ, कुछ मामलों में रक्त रंजित जरूर होती थी किंतु बहुधा अनाज, दूध तथा फलों से होती थी। उपवास, तीर्थ यात्रा, दान, तप और योग साधना ऐसे अच्छे काम थे जिनसे देवता प्रसन्न होते थे। कर्म मार्ग कानूनी कर्तव्यों का असुनिश्चित समारोहों का मार्ग था। इससे जीवन में समृद्धि आती थी और परलोक में स्वर्गिक आनंद प्राप्त होता था। मोक्ष पाने का दूसरा रास्ता था ज्ञान मार्ग। वेद और ब्राह्मणों ने कर्म के मूल्य पर बल दिया था किंतु जब देहांतरण और कर्मन के सिद्धांतों का जन्म हुआ तो हिंदू चिंतकों के तार्किक मस्तिष्क में यह स्पष्ट हो गया कि कर्म के प्रति निष्ठा से मुक्ति और स्वाधीनता नहीं प्राप्त हो सकती। कारण और परिणाम की कठोर श्रृंखला को तोड़ने के लिए कोई अन्य माध्यम खोजना जरूरी है जिससे आदिम कर्म का ऐसा आवेग समाप्त हो जाए जो अन्यथा अविनाशी है। यह पड़ताल करना आवश्यक हो गया कि स्वयं कर्म का स्वभाव क्या है और पूर्णता तथा रिक्तता का नियम क्या है। यह पड़ताल वनवासी योगियों के द्वारा प्रारंभ की गई जिनके प्रबल अनुमान उपनिषदों में निहित हैं। इन्हें जल्दी ही ग्रियर्शन के शब्दों में आर्यावर्त के बाहरी प्रदेशों में अर्थात उन लोगों में ले जाया गया जो वैदिक आर्य, क्षत्रियों और अन्य ब्राह्मणों के द्वारा अधिकृत मध्य क्षेत्र के दक्षिण, पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों में रहते थे। ब्रह्मांड के उद्भव और मानव की नियति के बारे में, अंतिम सत्य की प्रकृति और व्यक्ति से उसके रिश्ते के बारे में, अच्छे और बुरे के बारे में और आचरण के मनोविज्ञान के बारे में और मुक्ति के रास्ते के बारे में हुई गहरी और अंतरंग चर्चा ने कई धार्मिक दार्शनिक या उल्ट्रा मेयर के शब्दों में थियोसोफिक प्रणालियों को जन्म दिया। सांख्य, योग, वेदांत, बौद्ध, जैन, शैव, वैष्णव, तंत्र, लोकायत और अन्य। यद्यपि इनमें से प्रत्येक प्रणाली जीवन और चिंतन की समस्या के भिन्न हल प्रस्तुत करती थी, कुछ ऐसे तत्व तभी सभी में एक से हैं जो इस्लाम पूर्व भारतीय संस्कृति की बुनियाद है। पहली बात तो यह है कि सभी पद्धतियां एक ही बिंदु से शुरू होती हैं, अर्थात नियम सूत्र की वैदिक अवधारणा केवल वे पद्धतियां ही प्राचीन ऋषियों की तुलना में इसे अधिक जोरदार ढंग से लागू करती हैं। नियम की यह अवधारणा कर्मन की अवधारणा के साथ संलग्न है। कर्म कारण और परिणाम का संबंध है और वह एक शाश्वत अनादि अनंत ऐसी जंजीर है जिससे ब्रह्मांड और मनुष्य जकड़े हुए हैं। विराट विश्व के लिए लागू की जाने पर कर्मन की अवधारणा ब्रह्मांड सर्जनाएं तथा आनुवंशिक श्रृंखलाएं प्रदान करती है और विराट विश्व के लिए पुनर्जन्म या देहांतर का सिद्धांत प्रदान करती है। कर्म का मूल तत्व है बंधन और बंधन का अर्थ है कष्ट। मानव प्रयास का लक्ष्य इस जंजीर को तोड़ना और कष्ट को समाप्त करना है। समय, आकाश और कारण की पूर्व धारणाएं सभी विचारों की माध्यम हैं और सभी प्रणालियों में एक जैसी हैं। समय और आकाश ऐसे रिक्त शून्य नहीं हैं जिनमें वास्तविकता घटती है और वास करती है, बल्कि ये वास्तविकता के लचीले रूप ही हैं तथा वास्तविकता के सर्वव्यापी निरंतर और सार्वभौमिक माध्यम है। वस्तुनिष्ठ रूप से देखा जाए तो समय और आकाश एक जातीय सातत्यक नहीं है, वे सापेक्ष हैं। समय के क्षण अलग अलग प्रकार के जीवों के लिए अलग अलग होते हैं। उदाहरण के लिए सांसारिक समय की इकाई देवताओं की इकाई का सौवां भाग होता है, ब्रह्मा की इकाई का 10,00,000 भाग होता है और परमात्मा की इकाई का वह एक अनंत अंश होता है। आकाश समग्र और सूक्ष्म है और सूक्ष्म के भीतर सूक्ष्मतर आकाश जो आकाश के भीतर आकाश की श्रृंखला निर्मित करते हैं। समय और आकाश सत्यता के रूप है, इसलिए सत्यता को एक चक्रीय प्रक्रिया शाश्वत विकास और अंतर विकास आविर्भाव और पुनः आत्मसातीकरण और रूपों की अंत अभिव्यक्ति और विश्व के ऊपर विश्व के अनंत पुंज के रूप में देखा जाता है। अनियति के विचारों में माध्यम पदार्थ और उत्पाद की धारणा और उनके रिश्ते और अर्थ निहित रहते हैं। उनकी कई व्याख्याएं हैं। कभी कभी यह अर्थ निकलता है कि उत्पाद का निर्णय किसी माध्यम के द्वारा किया जाता है। कभी कभी सिर्फ घटनाओं की श्रृंखला का संकेत मिलता है और कभी कभी कारण और परिणाम के मध्य एक रूपता पर जोर होता है। निराकार का आविर्भाव कार्य कारण को अलग अलग विचारधाराएं अलग अलग तरीके से समझती हैं और किसी विशेष अर्थ के अनुसार ईश्वर और ब्रह्मांड के आपसी रिश्ते के बारे में कल्पना की जाती है। कार्य कारण की 4 मुख्य व्याख्याएं पाई जाती हैं। एक ईश्वरवादी जिसका मत है कि ईश्वर से शून्य से ब्रह्मांड की रचना की किंतु ब्रह्मांड सत्य है। 2 सत्यतावादी जो प्रकृति को ईश्वर के समान ही शाश्वत और स्वतंत्र मानता है और ईश्वर को केवल सृष्टिकर्ता मानता है। 3 अनिश्वरवादी जो ब्रह्मांड को ईश्वर का ही रूप मानता है और ईश्वर और ब्रह्मांड को एक मान लेता है। 4 आदर्शवादी जो यह मानता है कि ईश्वर के अलावा किसी का अस्तित्व नहीं है। आध्यात्मिक पूर्व धारणाओं के अतिरिक्त भारतीय प्रणालियों की पद्धति वही है। पहली धारणा यह है कि सत्य केवल तर्क या विश्वास के द्वारा नहीं जाना जाता बल्कि सीधे अनुभव के द्वारा जाना जाता है और अनुमान की शुरुआत सहज ज्ञान और दर्शन के साथ होना चाहिए और उसे उनका प्रदर्शन तर्क के द्वारा करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि दार्शनिक अनुशासन में सत्य का श्रवण उस पर मनन बारंबार ध्यान होना चाहिए और उसका अंत आत्मज्ञान में होना चाहिए। दार्शनिक सत्य का प्रस्तुतीकरण प्रज्ञा सत्य का अनुभव नहीं व्यक्ति के आवेश प्रकृति और बुद्धि पर निर्भर करता है। इसलिए दृष्टिकोणों और व्यक्तिगत जरूरतों पर ध्यान रखना चाहिए और उन्हें पूरा भी करना चाहिए। इस प्रकार देखने पर हिंदू दर्शन की 6 विभिन्न प्रणालियां एक श्रृंखला बनाती हैं। पूर्व मीमांसा में धर्म के व्यावहारिक पक्ष के बारे में बताया गया है और उसमें वैदिक कर्मकांड और कर्तव्यों के बारे में समझाया गया है। न्याय तर्क की पद्धति निरूपित करता है, वैशेषिक आध्यात्मिक सिद्धांतों की पहली व्याख्या प्रस्तुत करता है और ब्रह्मांड को अंतिम तत्व तक सीमित कर देता है। सांख्य व्याख्या को एक कदम आगे ले जाता है और संपूर्ण ब्रह्मांड को दो अंतिम सिद्धांतों से प्राप्त करता है, पुरुष और प्रकृति या आत्मा और पदार्थ। योग सांख्य की व्याख्या स्वीकार करता है और उस व्यावहारिक पद्धति पर विचार करता है जिसके द्वारा सिद्धांतों का सत्य सीधे अनुभव के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। अंत में वेदांत सांख्य योग की दो सत्यताओं को सिर्फ उस संपूर्ण सत्य में सीमित कर देता है जिसका प्रकटीकरण अनगिनत नामों और रूपों तथा अनंत रूपों के ब्रह्मांड में होता है। उपनिषदों और छह दार्शनिक प्रणालियों के धार्मिक पहलुओं को संक्षेप में रखा जा सकता है। सांख्य के अनुसार सत्यता दो सहशाश्वत पदार्थों से बनती है, आत्मा और पदार्थ। पदार्थ जब वह अभिन्न रहता है तो उसमें तीन तत्व सत्व जरस और तमस समान संतुलन में होते हैं। उसका गुण है परिवर्तन और सक्रियता। आत्माएं अनंत संख्या में होती हैं और वे सचेतन किंतु निष्क्रिय और अपरिवर्तनीय होती हैं। आत्माओं की उपस्थिति पदार्थ को उत्तेजित करके सक्रिय कर देती है, उसका संतुलन गड़बड़ा जाता है और वह विकास की प्रक्रिया में प्रवेश कर जाता है। विभिन्न पदार्थ से 25 तत्व विकसित होते हैं और उससे ब्रह्मांड का आविर्भाव होता है जिसमें आत्मा, शरीर और मस्तिष्क के शारीरिक और मनोवैज्ञानिक वाहन सम्मिलित हैं। आत्मा मस्तिष्क की प्रक्रियाओं को प्रकाशित करता है और स्वयं निष्क्रिय रहते हुए स्वयं की समरसता में स्वतंत्र रहकर मशीनी और अवचेतन को चेतना के धरातल पर लाता है, किंतु आत्मा का उसके वाहनों से जुड़ाव एक बंधन है और दुख तथा क्लेश पहुंचाता है। यह ऐसा भ्रम पैदा करता है जो आत्मा को जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसा देता है, किंतु आत्मा की अंतिम नियति मुक्ति है और यह आत्मा तथा पदार्थ के बीच के अनिवार्य अंतर को समझकर विश्लेषक ज्ञान पाकर प्राप्त किया जा सकता है। इस ज्ञान की प्राप्ति के बाद और पहले किए गए कामों के परिणाम समाप्त होने पर आत्मा मुक्त हो जाती है, मस्तिष्क विलीन हो जाती है और देश नष्ट हो जाती है। इसलिए आत्मा भ्रम और संसार के दुखों के से सदैव के लिए मुक्त हो जाती है। जैसे एक योगी जो कुछ नहीं देखता, एक कांच जिसमें कुछ प्रतिबिंब नहीं दिखता, एक शुद्ध प्रकाश जिससे कुछ प्रकाशित नहीं होता। योग सह शाश्वत सिद्धांतों की इस प्रणाली में एक तीसरा शाश्वत सिद्धांत जोड़ता है, अर्थात ईश्वर। ईश्वर को एक विशेष आत्मा के रूप में माना जाता है और उसमें सभी सद्गुण होते हैं। वह न तो सृष्टि करता है, न दंड देता है, न पुरस्कार देता है और न वह आदर प्रदान करता है, किंतु वह दया करके मुक्ति प्राप्त करने के मार्ग की बाधाओं को हटाने में उस व्यक्ति की सहायता करता है जो पूर्ण रूप से उसका भक्त है। योग ऐसा अनुशासन प्रदान करता है जिसके माध्यम से मुक्ति प्रदान करने वाला ज्ञान उपलब्ध किया जा सकता है। यह प्रसिद्ध अष्ट मार्ग है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान और समाधि। पहले में आवश्यक सद्गुणों की बातें कही गई है जिसमें कामनाओं के दमन को महत्व दिया गया है। अगले तीन में आत्म सम्मोहन की प्रक्रिया है और अंतिम दो में परमानंद और एकात्मकता की स्थिति है। वेदांत विश्व की उत्पत्ति की सांख्य अवधारणा को और योग के अष्टमार्गीय अनुशासन को मानकर चलता है, किंतु इस खोज को एक कदम आगे प्रकृति और आत्मा में पदार्थ और ईश्वर तक ले जाता है। आत्मन की प्रकृति के संबंध में वैशेषिक मान्यता यह है कि यह एक वास्तविकता है जिसमें चेतना तो बनी रहती है किंतु चेतना इसकी पूर्ण अनिवार्य विशेषता नहीं है। सांख्य का मत है कि आत्मा स्वयं चेतन या बुद्धिमान तो है, किंतु वह सभी बोधगम्य जीवों में एक है और समान है, और आत्मन ब्रह्म का ही रूप है, किंतु आत्मा अज्ञान के वशीभूत हो जाती है और संसार में प्रवेश करती है और क्लेश पाती है। इस क्लेश से तभी मुक्ति संभव है जब अज्ञान हटेगा और उसका सच्ची प्रकृति का अनुभव होगा। दर्शन की रूढ़िवादी विचारधारा जो ज्ञान मार्ग का प्रतिपादन करती है, उसके अतिरिक्त 7वीं और 8वीं सदी के भारत में अन्य कई प्रणालियां थी, अशास्त्रीय और सांप्रदायिक, जो ज्ञान के द्वारा मुक्ति पाने की बात कहते थे। उनमें सबसे महत्वपूर्ण थी बौद्ध प्रणालियां। बौद्ध धर्म हीनयान और महायान नाम की दो शाखाओं में विभक्त था और इनमें से प्रत्येक दो उप विभागों में विभाजित था, वैभाषिक और सौत्रांतिक। हीनयान की उप शाखाएं थी और योगाचर और माध्यमिका, महायान की उप शाखाएं थी। बौद्ध धर्म की शुरुआत ब्राह्मणवाद की औपचारिकता के विरोध में हुई थी और वह आत्मा के स्वरूप और ब्रह्मन से संबंधित उसके अनिवार्य सिद्धांतों को स्वीकार नहीं करता था। इन दोनों के बारे में उसका दृष्टिकोण नकारात्मक था। आत्मा का एक वस्तु के रूप में अस्तित्व नहीं है, जो भी अस्तित्व में है वह स्कंधों का विस्तार था जो पास आने पर स्थायी एकता का निर्माण करते हैं। ब्रह्मांड एक योजना थी और उसके आदि तथा अंत के बारे में अनुमान लगाना निरर्थक है। ज्ञात विश्व एक कार्य कारण व्यवस्था थी। श्रृंखला में पहली कड़ी अज्ञान था, जो कर्म, चेतना, मस्तिष्क, शरीर, इंद्रिया, संपर्क, अनुभव, तृष्णा, आत्मसात करना, होना, जन्म, पतन, मृत्यु, क्लेश, दुख और पीड़ा को जन्म देता है। इस मार्ग में सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाचा, सम्यक कर्मन, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि होते हैं। इस अष्ट मार्ग का अनुयायी 4 चरणों में होकर गुजरता है। पहला नव दीक्षित यानी श्रोतापन्न, जिसने मानव वासनाओं के पहले 3 बंध नों को तोड़ दिया है। दूसरा पहले लौटने वाला यानी सक्रदागामिन, जो पुरुषों की दुनिया में सिर्फ एक ही पुनर्जन्म लेगा क्योंकि उसमें न्यूनतम प्रेम, घृणा और मोह है। तीसरा कभी न लौटने वाला यानी अनागामीन, जिसने 5 बंधनों, नव दीक्षित के 3 और लगाव तथा घृणा से स्वयं को मुक्त कर लिया है और जो पुरुष में नहीं बल्कि ब्रह्मलोक में पैदा होगा। और अंतिम अर्हत, जिसके कर्म समाप्त हो गए हैं और सभी बंधन टूट गए हैं और जिसे पुनर्जन्म नहीं लेना होगा। अष्टमार्ग और चतुर्मार्ग का उद्देश्य निवारण पाना था। निब्बान सर्वोच्च आनंद है और सभी मार्गों में अष्टमार्ग ही है जो मृत्युहीन सुरक्षा में ले जाता है। हीनयान और महायान संप्रदाय में तत्व दर्शन के प्रश्न, मनुष्य के भाग्य और कर्म कांडों को लेकर मतभेद था। हीनयान संप्रदाय के अनुयायी वास्तववादी थे और इस विश्व के वास्तविक अस्तित्व को स्वीकार करते थे। महायान संप्रदाय के अनुयायी आदर्शवादी थे, योगाचार चेतना को छोड़कर सभी के वास्तविक अस्तित्व को नकारते थे। माध्यमिका के अनुयायी मानते थे कि संपूर्ण विश्व अवास्तविक और माया है और इसमें वे शंकर के गुरु थे। हीनयान संप्रदाय के लोगों को केवल व्यक्ति के भाग्य इसमें से सरोकार था और वे अर्हतोन में उपलब्धि की सर्वोच्च संभावना पाते थे। महायान संप्रदाय के अनुयायियों का उद्देश्य सार्वभौमिक निर्वाण था और उनका मानना था कि बुद्धत्व अपने सभी दैवीय शक्तियों सहित उपलब्ध किया जा सकता है। इस प्रकार हीनयानों के कर्म कांड सादे थे, जबकि महायान में मंदिरों, मूर्तियों का और बोधिसत्वों की पूजा का प्रचार था। यह बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म का समन्वय था। उस समय के भारत में जो धार्मिक दार्शनिक प्रणालियां विद्यमान थी उनमें जैन धर्म का महत्वपूर्ण स्थान था। जैन लोग एक भावातीत या पूर्ण अस्तित्व में विश्वास नहीं करते। वे सत्य को जीव और अजीव में विभाजित करते थे। जीव के वर्ग में वे दो प्रकार के शरीरों को शामिल करते थे, एक तो स्थिर, उदाहरण के लिए खनिज, पानी, अग्नि, हवा और वनस्पति, तथा दूसरा चलित, जिनमें सर्वोच्च वे हैं जिनमें पांच प्रकार की अनुभूतियां होती हैं। अंतिम को पांच वर्गों में बांटा गया है, सिद्ध, अरहत, आचार्य, उपाध्याय, साधु। आत्मा में नौ गुण होते हैं, किंतु उनमें मुख्य है चेतना। अजीव बिना चेतना के होते हैं। उनमें पांच पदार्थों में बांटा गया है, पदार्थ, आकाश, समय, धर्म जो गति का सिद्धांत है, और धर्म जो गतिहीनता का सिद्धांत है। जीव कार्मिक पदार्थ के संपर्क में आता है जिसके कारण वह अशुद्ध हो जाता है और उसके चार महान गुण नष्ट हो जाते हैं, सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान, सम्यक शक्ति और सम्यक आनंद। कर्मन के नष्ट होने से जीव अस्तित्व के चक्र में बन जाता है जो दो प्रकार की प्रक्रियाओं का परिणाम है, एक कार्मिक पदार्थ का जीव की ओर आश्रय और दो जीव का कार्मिक पदार्थ के द्वारा बंधन। यह बंधन दो चरणों में टूटता है, एक किसी ताजे पदार्थ के बंधन को रोककर और दो उस पदार्थ को त्याग कर जिसमें जीव बंध है। इस प्रक्रिया का अंत है निर्वाण। दो कदमों में संकल्प, तप और त्याग आते हैं जिनके जरिए अशुद्धताएं क्रमशः धुल जाती हैं और जीव मोक्ष प्राप्त कर लेता है। तीन मुख्य हिंदू दार्शनिक प्रणालियां हैं, वैष्णव, शैव और तांत्रिक। इन तीन संप्रदायों में सम्मिलित विभिन्न प्रणालियों का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। उनके उद्गम और विकास के प्रश्न पर चर्चा किए बिना यहाँ संक्षेप में यह बताना जरूरी है कि वे किस रूप में हर्ष के साम्राज्य के विघटन के बाद की सदी में विद्यमान थे। पंचरात्र प्रणाली में विष्णु भावातीत पूर्ण सत्य है, लक्ष्मी ऊर्जा है जो उसमें वैसे ही निवास करती है जैसे मैं में अहम और चंद्रमा में चंद्रिका। लक्ष्मी के दो पहलू होते हैं, क्रिया शक्ति के रूप में वह विष्णु की मनसा का प्रतिनिधित्व करती है और आकाश और समय से स्वतंत्र है। बुद्धि शक्ति के रूप में वह ब्रह्मांड का आधार है। सृष्टि उस समय प्रारंभ होती है जब लय की रात्रि के समाप्ति से के समय विष्णु अपने आदेश से लक्ष्मी को जागृत करते हैं। आविर्भाव का पहला चरण ईश्वर के छह गुणों का अर्थात ज्ञान, स्वामित्व, अधिकार, शक्ति, पौरुष और वैभव प्रकट होना है। ये शुद्ध सृष्टि के उपकरण हैं। अपनी समग्रता में गुण वासुदेव की देह को स्वरूप देते हैं जो सर्वोच्च व्यक्तिगत ईश्वर है। वासुदेव से आत्ममंथन से तीन व्यूह प्रकट होते हैं जिनमें से हर एक दो गुणों से जाना जाता है, अर्थात ज्ञान और स्वामित्व के जरिए संकर्षण को, अधिकार और शक्ति के जरिए प्रद्युम्न को, और पौरुष और वैभव के जरिए अनिरुद्ध को।